पेज नंबर 26। सहजन्या। साधु साधु मैं इनके तुम्हारा भी मन कहीं फंसा है, मिट्टी का मोहन कोई अंतर में आन बसा है। तुम भी हो बन गई महीतल पर रूपसी किसी की, किन्हीं मर्त नैनों की रस प्रतिमा उर्वशी किसी की। सखी उर्वशी सी तुम भी लगती कुछ मदमाती हो, मर्त्यों की महिमा तुम भी तो उसी तरह गाती हो। शब्दार्थ मिट्टी का यानी धरती का निवासी, मोहन यानी मोहित करने वाला, अंतर में यानी हृदय में, महीतल यानी पृथ्वी, रूपसी यानी प्रेमिका, मर्त नयनों की यानी नश्वर मनुष्य के नेत्रों की, रस प्रतिमा यानी आनंद देने वाली मूर्ति। व्याख्या। हे मेनका, तुम ठीक कहती हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी किसी से प्रेम हो गया है। धरती का निवासी तथा मन को मोहने वाला कोई तुम्हारे हृदय में आ बसा है। तुम इस पृथ्वी पर किसी की प्रेमिका बन गई हो, तुम किसी भूलोक निवासी के नेत्रों को आनंद देने वाली मूर्ति बन गई हो, किसी के हृदय की उर्वशी बन बैठी हो। हे सखी, तुम उर्वशी के समान भी कुछ मदोन्मत्त प्रतीत होती हो, क्योंकि इस भूलोक के नश्वर प्राणियों की महिमा तुम भी उसी प्रकार गा रही हो जिस प्रकार उर्वशी गाती है। विशेष रूपक और उपमालंकार। रंभा। अरे ठीक तूने सहजन ने अच्छी याद दिलाई, आज हमारे साथ यहां उर्वशी नहीं क्यों आई। शब्दार्थ सरल है। व्याख्या। हे सहजन्या, तुमने अच्छा ही किया जो उर्वशी की याद दिला दी, लेकिन यह बताओ कि वह आज हमारे साथ क्यों नहीं आई। सहजन्या। वाह, तुम्हें ही ज्ञात नहीं है कथा प्राण प्यारी की, तुम ही नहीं जानती प्रेम की व्यथा दिव्य नारी की। नहीं जानती हो कि एक दिन हम कुबेर के घर से लौट रही थी, जब इतने में एक दैत्य ऊपर से टूटा लुब्ध शेन सा हमको त्रास अपरमित देकर, और तुरंत उड़ गया उर्वशी को बाहों में लेकर। शब्दार्थ। दिव्य यानी महान, दैत्य यानी राक्षस, शुब्ध शेन से यानी लोभी बाज की तरह, त्रास यानी दुख, अपरमित यानी बहुत अधिक अपार। व्याख्या। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हें अपनी प्राण प्यारी सखी उर्वशी की कथा ही मालूम नहीं है, और तुम भी उस महान नारी के प्रेम के दुख को नहीं जानती। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि एक दिन जब हम कुबेर के घर से लौट रही थी, तो इतने में ही लोभी बाज के समान एक राक्षस ऊपर से नीचे आया और हमको अपार दुख देकर हमारी प्यारी सखी उर्वशी को अपनी बाहों में भरकर तुरंत उड़ गया। रंभा। बाहों में ले उड़ा, अरे आगे की कथा सुनाओ। व्याख्या। रंभा कहती है, क्या कहा? एक राक्षस उर्वशी को अपनी बाहों में लेकर उड़ गया। हे सखी, मुझे पूरी कथा सुनाओ। सहजन्या। यही कि हम रो उठी दौड़कर, कोई हमें बचाओ। रंभा। तब क्या हुआ? सहजन्या। पुकार हमारी सुनी एक राजा ने, दौड़ पड़े वे सदैव उर्वशी को अविलंब बचाने, और उन्हीं नरवीर नृपति के पौरुष से भुजबल से मुक्त हुई उर्वशी हमारी उस दिन काल कवल से। शब्दार्थ। सदय यानी दयालु, अविलंब यानी शीघ्र, काल कवल यानी मृत्यु का मुख। सहजन्या कहती है कि पूरी कथा यही है कि हम उसे ले जाते देख कर रो पड़ी और पुकार मचाने लगी कि अरे कोई हमें बचाओ। तब रंभा कहती है, तब फिर क्या हुआ? फिर सहजन्या समझाती है, हमारी पुकार एक राजा ने सुनी और वे दयालु राजा शीघ्र ही उर्वशी को उन राक्षस के पंजे से छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े। उन्हीं नरवीर राजा के साहस से, भुजाओं के बल से उस दिन हमारी सखी उर्वशी काल के मुख से छूटी। रंभा। ये राजा तो बड़े वीर हैं। रंभा कहती है कि जिस राजा ने उर्वशी को राक्षस के पंजे से छुड़ाया, ये राजा तो वास्तव में बड़े वीर हैं। सहजन्या। और परम सुंदर भी, ऐसा मनोमुग्धकारी तो होता नहीं अमर भी। इसीलिए तो सखी उर्वशी उषानंदन वन की, सुरपुर की कौमुदी कलित कामना इंद्र के मन की, सिद्ध विरागी की समाधि में राग जगाने वाली, देवों के शोणित में मधुमय आग लगाने वाली, रथ की मूर्ति रमा की प्रतिमा, तृषा विश्वमय नर की, विधु की प्राणेश्वरी, आरती शिखा काम के कर की। जिसके चरणों पर चढ़ने को विकल व्यग्र जन जन है, जिस सुषमा के मदिर ध्यान में मग्न मुग्ध त्रिभुवन है, पुरुष रत्न को देख न वह रह सकी आप अपने में, डूब गई सुरपुर की शोभा मिट्टी के सपने में। प्रस्तुत है देवता जिसे सब कुछ देकर पाने को, स्वर्ग कुसुम वह स्वयं विकल है वसुधा पर जाने को। शब्दार्थ मनोमुग्धकारी यानी मन को मोहित करने वाला, अमर यानी देवता, कौमुदी यानी चांदनी, कलित यानी सुंदर, राग यानी प्रेम, शोणित यानी खून, रति यानी कामदेव की स्त्री जो सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, रमा यानी लक्ष्मी, प्रतिमा यानी मूर्ति, तृषा यानी प्यास लालसा, विधु यानी चंद्रमा, काम यानी कामदेव, मदे यानी नशीला। व्याख्या वह राजा जिसने उर्वशी को राक्षस के पंजों से छुड़ाया वीर ही नहीं बल्कि परम सुंदर भी है। देवता भी ऐसा मन को मोहित करने वाला नहीं होता, इसीलिए तो सखी उर्वशी जो नंदन वन की उषा है, स्वर्गलोक की चांदनी है, इंद्र के मन की सुंदर इच्छा है, सिद्ध और वैराग्यों की समाधि में भी प्रेम को जगाने वाली है, देवताओं के खून में भी मधुर आग लगाने वाली है, जो रति की और लक्ष्मी की साक्षात मूर्ति है, और विश्वमय नर की लालसा है, जो चंद्रमा की प्राणेश्वरी है, कामदेव के हाथ की आरती शिखा है, जिसके चरणों पर चढ़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति विकल और व्यग्र है, जिस शोभा युक्त उर्वशी के नशीले ध्यान में तीनों लोक मग्न और मुग्ध हैं, वही उर्वशी उस पुरुष रत्न को देखकर अपने आपे में न रह सकी, अर्थात स्वयं पर नियंत्रण न कर सकी। वह स्वर्गलोक की शोभा मर्तलोक के वासी से प्रेम करके अपने स्वप्नों में खो गई। जिस उर्वशी को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके प्राप्त करने के लिए देवता सदैव तैयार हैं, वह स्वर्ग कुसुम स्वयं पृथ्वी पर जाने के लिए व्याकुल है। विशेष रूपक और उल्लेख अलंकार। रंभा सो क्या उर्वशी उतरकर भू पर सदा रहेगी, निरी मानवी बनकर मिट्टी की सब व्यथा सहेगी। शब्दार्थ मिट्टी की यानी मर्तलोक की व्यथा यानी दुख। व्याख्या तो अब क्या उर्वशी स्वर्ग से आकर सदा के लिए पृथ्वी पर बस जाएगी और निरी मानवी बनकर मर्तलोक के दुखों को सहन करती रहेगी। पेज नंबर 28 सहजन्या। सो जो हो पर प्राणों में उसके जो प्रीत जगी है, अंतर की प्रत्येक शिरा में ज्वाला जो सुलगी है, छोड़ेगी वह नहीं उर्वशी को अब देव निलय में, ले जाएगी खींच उसे उस नृप के बाहुवलय में। शब्दार्थ अंतर यानी हृदय, शिरा यानी नस, देव निलय यानी स्वर्गलोक, बाहुवलय यानी बाहुपाश। व्याख्या चाहे जो भी हो किंतु यह निश्चित है कि उर्वशी के प्राणों में जो प्रीति लगी उगी है, उसके हृदय की प्रत्येक नस में प्रीति की जो आग सुलगी है, वह अब उसे स्वर्गलोक में नहीं रहने देगी बल्कि उसे खींचकर उसी राजा के बाहुपाश में ले जाएगी। कहने का भाव यह है कि उर्वशी अब स्वर्गलोक में नहीं रह सकती। रंभा ऐसा कठिन प्रेम होता है। सहजन्या इसमें क्या विस्मय है, कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है, लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है, मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती है, भींगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है। सखी उर्वशी भी कुछ दिन से है खोई खोई सी, तन से जगी स्वप्न के कुंजों में मन से सोई सी, खड़ी खड़ी अनमनी तोड़ती हुई कुसुम पंखड़ियां, किसी ध्यान में पड़ी गंवा देती घड़ियों पर घड़ियां, दृग से झरते हुए अश्रु का ज्ञान नहीं होता है, आया गया कौन इसका कुछ ध्यान नहीं होता है, मुख सरोज मुस्कान बिना आभा विहीन लगता है, भुवन मोहिनी श्री का चंद्रानन मलिन लगता है, सुनकर जिनकी झमक स्वर की तंद्रा फट जाती थी, योगी की साधना सिद्ध की नींद उछट जाती थी, वे नूपुर भी मौन पड़े हैं निरानंद सुरपुर है, देव सभा में लहर लास की अब वह नहीं मधुर है, क्या होगा उर्वशी छोड़ जब हमें चली जाएगी। रंभा पूछती है कि क्या प्रेम इतना कठिन है, तब सहजन्या समझाती है कि वास्तव में प्रेम बहुत कठिन होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कहते हैं कि मर्तलोक में जितने भी रोग हैं उनमें सबसे कठिन रोग प्रेम का है, जिसे यह रोग लग जाता है उसे रात भर नींद नहीं आती, उसका दिन विरह के कारण रोते रोते और रात आह भरते भरते कटती है, उसका मन खोया खोया सा रहता है, आंखों में हर समय आंसू झलके रहते हैं और उसकी भीगी हुई पुतलियों में उसके प्रियतम अथवा प्रियतमा की मूर्ति सदैव विद्यमान रहती है। इसीलिए सखी उर्वशी भी कुछ दिन से खोई खोई सी रहती है। वह शरीर से तो जागती रहती है किंतु मन में सोई सी रहती है और अपने स्वप्नों के निकुंजों में विचरण करती रहती है। वह खड़ी खड़ी अनमने भाव से कुसुम की पंखुड़ियों को तोड़ती रहती है और किसी के ध्यान में राजा पुरूर्वा की स्मृति में ही वह सारे समय को बिता देती है। उसे अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं का ही पता नहीं चलता, कौन आया कौन गया इसका भी उसे कुछ ध्यान नहीं होता। प्रेम रोग लगने पर व्यक्ति का मुख कमल मुस्कान के अभाव में शोभा से रहित हो जाता है और तीनों लोगों को मोहित करने वाली मुख कमल की शोभा मलिन पड़ जाती है। जिस उर्वशी के जिन पायलों की झनक को सुनकर स्वर्ग की तंद्रा समाप्त हो जाती थी, अर्थात समूचे स्वर्ग में जीवन का संचार हो जाता था, योगी की साधना और सिद्ध की नींद उचट जाती थी, वे नुपुर अचुप पड़े हुए हैं। विरह दुख के कारण उर्वशी ने नृत्य करना छोड़ दिया है और इसीलिए सारा स्वर्गलोक नीरस बन गया है। अब देव सभा में लाश से यह प्रकार का नृत्य क्यों मधुर लहर नहीं रही जो उर्वशी के नाचने से दौड़ा करती। हे सखी, अब उर्वशी हमें छोड़कर चली जाएगी, न जाने अब क्या होगा। विशेष विरही के भावों और अनुभावों का सजीव चित्रण हुआ है। पेज नंबर 29, रंभा। स्वर्ग बनेगा मही, मही तब सुरपुर हो जाएगी। सहजन्य पर हम परियों का इतना भी रोना क्या, किसे किसी एक नर के निमित्त इतना धीरज खोना क्या। हम भी हैं मानवी कि जो ही प्रेम उगे रुक जाएं, मिले जहां भी दान हृदय का वहीं मग्न झुक जाएं। प्रेम मानवी की निधि है अपनी तो वह क्रीड़ा है, प्रेम हमारा स्वाद मानवी की आकुल पीड़ा है। शब्दार्थ, निमित्त यानी लिए, मग्न यानी प्रसन्न होकर, निधि यानी संपत्ति, क्रीड़ा यानी खेल। व्याख्या, रंभा कहती है, हे सहजन्या, जब उर्वशी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर चली जाएगी तब पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी और स्वर्ग पृथ्वी का रूप अपना लेगा। लेकिन मुझे तो यह आश्चर्य है कि हम मानवी नहीं परियां हैं। हम परियों को किसी के प्रेम में फंसकर रोने से कोई सरोकार नहीं होता, अर्थात हम किसी भी व्यक्ति के साथ गंभीरता से प्रेम नहीं करती। इसीलिए हमें किसी एक आदमी के प्रेम में पड़कर अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हम वे मानवी नहीं हैं जो जहां भी प्रेम का अंकुर उनके हृदय में अंकुरित होता है वे वहीं रुक जाती हैं। उन्हें जहां भी प्रेम का दान मिलता है वे वहीं पर प्रसन्न होकर झुक जाती हैं। प्रेम मानवी की संपत्ति है लेकिन हमारे लिए तो वह केवल एक खेल है। मानवी के लिए आकुल पीड़ा है किंतु हमारे लिए तो वह केवल स्वाद है। कहने का भाव यह है कि परियां किसी के साथ गंभीरतापूर्वक प्रेम नहीं किया करते। रंभागे कहती है, जन्मी हम किस लिए मोद सबके मन में भरने को, किसी एक को नहीं मुग्ध जीवन अर्पित करने को। सृष्टि हमारी नहीं संकुचित किसी एक आनन में, किसी एक के लिए सुरभि हम नहीं संजोती तन में। शब्दार्थ, मोद यानी प्रसन्नता, मुग्ध यानी यौवन से परिपूर्ण, आनन यानी मुख, सुरभि यानी सुगंध। व्याख्या, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम सब व्यक्तियों के मन में प्रसन्नता भरें, अर्थात सभी को प्रसन्न करें। हमारा ध्येय किसी एक व्यक्ति को अपना यौवन से परिपूर्ण जीवन अर्पित कर देना नहीं है। किसी एक मुख के लिए हमारी संकुचित सृष्टि नहीं हुई है और न हम किसी एक व्यक्ति के लिए अपने तन में सुगंधि संजोती है। कहने का भाव है कि परियों को किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करना चाहिए। रंभागे कहती है, खल खल कर बह रहा मुक्त जो कूलहीन वह जल है, किसी गेह का नहीं दीप जो हम वह द्युति कोमल है। रचना की वेदना जगा जग में उमंग भरती हैं, कभी देवता कभी मनुज का आलिंगन करती हैं। परियह परिरंभ प्रकाश परिरंभण प्रकाश का मन का रश्मि रमण है, गंधों के जग में दो प्राणों का निर्मुक्त भ्रमण है। शब्दार्थ, कूलहीन यानी किनारा रहित, गेह यानी घर, द्युति यानी प्रकाश, परिरंभण यानी आलिंगन, रश्मि यानी किरण, निर्मुक्त यानी स्वच्छंद। व्याख्या, हम वह जल हैं जो किनारा रहित हैं, अर्थात किनारों के बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। हम किसी घर के दीपक नहीं हैं बल्कि वह कोमल प्रकाश हैं जो सबके लिए प्रकाशित होता है। हम रचना को वेदना जगाकर संसार की उमंगों से भरती हैं, और कभी देवता का तथा कभी मनुष्य का आलिंगन करती हैं, किंतु यह आलिंगन प्रकाश का होता है, किरणों के रमण द्वारा मन का होता है, अर्थात यह हमारा आलिंगन बहुत सूक्ष्म होता है। हमारा प्रेम गंधों के संसार में दो प्राणियों का स्वच्छंद भ्रमण होता है। कहने का भाव यह है कि हमारा प्रेम स्थूल नहीं, सूक्ष्म होता है। आगे कहती हैं, सच है कभी कभी तन में भी मिलती रागमयी हम, कनक रंग में नर को रंग देती अनुरागमयी हम, देती मुक्त उड़ेल अधर मधुताप तप्त अधरों में, सुख से देती छोड़ कनक कलशों की को उष्ण करों में, पर यह तो रसमय विनोद है भावों का खिलना है, तन की उद्वेलित तरंग पर प्राणों का मिलना है। शब्दार्थ, अनुरागमयी प्रेम से परिपूर्ण, कनक रंग स्वर्ण रंग, अधर मधु होठों का अमृत, ताप तप्त दुख से दुखी, उष्ण यानी गर्म, उद्वेलित यानी चंचल, तरंग यानी लहर। व्याख्या, यह भी सच है कि प्रेम से परिपूर्ण होकर हम कभी कभी तन से भी मिलती हैं, अर्थात हमारा मिलना स्थूल भी होता है, और तब हम अनुरागमयी मनुष्य को स्वर्ण रंग में रंग देती हैं। हम अपने होठों का अमृत प्रेमी के दुख से दुखी शरीर को होठों पर उड़ेल देती हैं, और कनक कलश के समान शरीर को मनुष्य के गर्म हाथों में सुख से छोड़ देती हैं। किंतु यह हमारे जीवन का ध्येय नहीं, बल्कि आनंद से भरा इस प्रकार का विनोदपूर्ण मिलन है जिसमें हमारे मधुर भाव खिलते हैं। वस्तुतः यह तन की चंचल लहर पर प्राणों का मिलन है। आगे, रचना की वेदना जगाती पर्ण स्वयं रचती हम, बंध कर कहीं विविध पीड़ाओं में न कभी पचती हम, हम सागर आत्मजा सिंधु सी ही असीम उच्छल हैं, इच्छाओं की अमित तरंगों से झंकृत चंचल हैं, हम तो हैं अप्सरा पवन में मुक्त विहरने वाली, गीत नाद सौरभ सुवास से सबको भरने वाली। शब्दार्थ, सागर आत्मजा यानी सागर की पुत्री, उच्छल यानी उछलन, अमित यानी अपार, हम रचना की वेदना जगाती हैं किंतु निर्माण नहीं करती, अर्थात स्वयं दुखी नहीं होती, हम विविध पीड़ाओं में बंध कर भी कभी नहीं पचती, हम सागर की पुत्रियां हैं और सागर की भांति ही असीम उछलन है, अर्थात जिस प्रकार सागर तरंगित होता है उसी प्रकार हम भी अपने यौवन की तरंगों से लहराती रहती हैं, हम इच्छाओं की लहरों से झंकृत होती हैं और चंचल बनी रहती हैं, हम तो अप्सरा हैं और स्वच्छंद पवन स्वतंत्रतापूर्वक विहार करने वाली हैं, हम गीत की ध्वनियों से सदा सौरभ की सुगंधि से सब के मन को भरने वाली हैं। विशेष उपमालंकार, आगे, अपना है आवास न जाने कितनों की चाहों में, कैसे हम बंध रहे किसी भी नर की दो बाहों में, और उर्वशी जहां वास करने पर आन तुली है, उस धरती की व्यथा अभी तक उस पर नहीं खुली है। शब्दार्थ, आवास। व्याख्या, हमारा निवास तो न जाने कितने मनुष्यों की इच्छाओं में है, अर्थात न जाने कितने मनुष्य हमें प्यार करते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, फिर हम किसी एक व्यक्ति को प्रेम करके उसके दो बाहों में कैसे बंधी रहें, और उर्वशी जिस भूलोक में निवास करने पर तुली हुई है उसे अभी तक यह ज्ञात नहीं हो सका है कि स्मृतलोक में कितने कितने दुख हैं। पेज नंबर 30, सहजन्य। कौन व्यथा उर्वशी भला पाएगी भू पर जाकर, सुखी होगा उसे वहां प्रियतम को कंठ लगाकर। व्याख्या, सहजन्या कहती है, पृथ्वी पर जाकर उर्वशी को कोई दुख नहीं होगा, बल्कि प्रियतम को अपने गले से लगाकर उसे सुखी मिलेगा। विशेष, जाकर के स्थान पर आकर का प्रयोग अधिक उपयुक्त है, क्योंकि सहजन्या और रंभा पृथ्वी पर उतरकर ही वार्ता कर रही हैं। रंभा, सो सुख तो होगा परंतु यह मही बड़ी कुत्सित है, जहाँ प्रेम की मादकता में भी यातना निहित है, नहीं पुष्प ही अलम वहाँ फल भी जनना होता है, जो भी करती प्रेम उसे माता बनना होता है। शब्दार्थ, मही पृथ्वी, कुत्सित घृणित, निहित छिपी हुई, अलम यानी बस। व्याख्या, उर्वशी को प्रियतम के कंठ से लगाकर सुख तो अवश्य प्राप्त होगा, किंतु यह भूलोक बड़ा ही घृणित है, यहाँ प्रेम की मादकता में यातना भी छिपी हुई है, यहाँ पर केवल फूल की स्थिति ही बस नहीं है, अर्थात केवल मनोरंजन ही से इतिश्री नहीं हो जाती, बल्कि फल को भी उत्पन्न करना होता है। इस भूलोक में जो भी प्रेम करती है उसे माता बनना होता है, किसी न किसी शिशु को जन्म देना होता है, और शिशु को जन्म देना हम अप्सराओं की मर्यादा के विरुद्ध है। रंभा आगे कहती है, और मातृपद को पवित्र धरती यद्यपि कहती है, पर माता बनकर नारी क्या क्लेश नहीं सहती है। तन हो जाता शिथिल दान में यौवन गल जाता है, ममता के रस में प्राणों का वेग पिघल जाता है। रुक जाती है राह स्वप्न जग में आने जाने की, फूलों में उन्मुक्त घूमने की सौरभ पाने की। मेघों में कामना नहीं उन्मुक्त खेल करती है, प्राणों में फिर नहीं इंद्रधनुषी उमंग भरती है। शब्दार्थ, मातृपद यानी माता का स्थान, ममता यानी मोह, उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, सौरभ यानी सुगंधि, इंद्रधनुषी यानी रंग बिरंगी। व्याख्या, इस भूलोक में यद्यपि माता का स्थान पवित्र माना गया है, तथापि माता बनकर नारी को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। शिशु को जन्म देने के कारण उसका शरीर शिथिल हो जाता है और प्रेम दान करने से यौवन नष्ट हो जाता है। स्वप्न लोक में विचरण करने के मार्ग रुक जाते हैं। स्वतंत्र रूप से फूलों में घूमने की तथा सुगंधि प्राप्त करने की आदत समाप्त हो जाती है। तब मन की इच्छा इतनी प्रबल नहीं रह जाती कि वह बादलों के साथ स्वतंत्र होकर खेल कर सके, और फिर मन में रंग बिरंगी उमंगों का जन्म होता है, नहीं होता है। कहने का भाव यह है कि माता बनने से नारी की तमाम स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है और उसकी स्वच्छंद प्रवृत्तियां छिन जाती है। रंभा आगे कहती है, रोग शोक संताप जरा सब आते ही रहते हैं, पृथ्वी के प्राणी विषाद निपाते ही रहते हैं। अच्छी है यह भूमि जहां बूढ़ी होती है नारी, कण भर मधु का लोभ और इतनी विपत्तियां सारी। शब्दार्थ, संताप यानी दुख, जरा यानी बुढ़ापा, विषाद यानी दुख, नित यानी हमेशा, मधु यानी शहद आनंद। व्याख्या, इस भूलोक में माता बनने पर रोग शोक दुख और बुढ़ापे से नारी ग्रस्त हो जाती है, और इन्हीं व्याधियों से आक्रांत होकर इस संसार के प्राणी सदैव दुख पाते रहते हैं। जहां पर नारी बूढ़ी हो जाती है उससे उसका यौवन छिन जाता है, वह पृथ्वी अच्छी नहीं है। यहां पर केवल एक कण शहद के लिए, तनिक आनंद के लिए नारी इतनी सारी विपत्तियां झेलती हैं। पेज नंबर 31, सहजन्या। उफ, ऐसी है घृणित भूमि, तब तो उर्वशी हमारी सचमुच ही कर रही नरक में जाने की तैयारी। तूने भी रंभे निर्घिन क्या बातें बतलाई हैं, अब तो मुझे मही रौरव सी पड़ती दिखलाई है। सहजन्या कहती है, उफ शब्दार्थ में निर्घिन यानी घृणित, रौरव सी यानी नरक के समान। सहजन्या कहती है, उफ हे रंभा, यदि भूलोक वास्तव में ऐसा ही घृणित है जैसा तुमने बतलाया है, तब तो हमारी प्यारी सखी उर्वशी सचमुच ही नरक में जाने की तैयारी कर रही है। हे रंभा, तुमने भूलोक के विषय में जो घृणित बातें बतलाई हैं, उन्हें सुनकर तो मुझे भूलोक नरक के समान दिखलाई देने लगा है। सहजन्या आगे कहती है, गर्भ भार उर्वशी मानवी के समान ढोएगी, यह शोभा यह गठन देह की यह प्रकांति खोएगी। जो अयोनिजा स्वयं वही योनिज संतान जनेगी, यह सुरम्य सौरभ की कोमल प्रतिमा जननी बनेगी। किरणमयी यह परी करेगी यह विरूपता धारण, वह भी और नहीं कुछ केवल एक प्रेम के कारण। शब्दार्थ प्रकांति यानी कांति, अयोनिजा यानी जिसका जन्म योनि से न हुआ हो, योनिज यानी योनि से उत्पन्न होने वाला, प्रतिमा यानी मूर्ति, विरूपता यानी सुंदरता। व्याख्या, तब तो उर्वशी मानवी की तरह गर्भवती बनकर गर्भ का भार ढोएगी, और उसके कारण अपनी शोभा अपने शरीर का गठन अपनी कांति को समाप्त कर देगी। यद्यपि स्वयं उर्वशी का योनि से जन्म नहीं हुआ है, तथापि वह योनि से उत्पन्न होने वाली संतानों को जन्म देगी। वह उर्वशी जो सुंदर सुगंधि की कोमल मूर्ति है वह माता बन जाएगी। इस प्रकार किरणों के समान दीप्त होने वाली यह परी असुंदरता को धारण कर लेगी, और इतना सब कुछ वह केवल एक प्रेम के कारण सहन करेगी।